ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सब हिंदी वाले आगे आ जाओ, सब हिंदी वाले। द क्लास विल बी हिंदी, सो यू कैन गो बैक साइड योर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। व्हाई द ट्रांसलेटर दे कम वेरी लेट? राघव, हरे जी राघव। एंड देन दिस बुक स्टॉल वाला क्या नाम? हेमगिरी। वो हेमगिरी पर्वत पर चला गया लगता है। तो आज हम लोग, जैसा कि कहा गया है, एनीवे समबडी कैन स्टार्ट एंड देन दे विल द लेट कमर्स विल कम एनीवे। तो जगन्नाथ भगवान के कुछ लीला के विषय में श्रवण करेंगे, क्योंकि कल जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो मैं आज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से अध्याय 13, इस अध्याय का नाम है उत्साहवर्धक भगवान चैतन्य महाप्रभु का नृत्य जगन्नाथ रथ यात्रा शीर्षक से कुछ हम लोग पढ़ेंगे, और बीच में कुछ कथाएं आएंगी इस संबंध में, तो उन कथाओं पर भी जगन्नाथ लीला की कथा का विचार करेंगे। जिया कृष्ण चैतन्य श्रीरथ अग्रे ननर्त या जेना आसिता जगन्नाथम चित्रम जगन्नाथ अपि विस्मितः यज्यात कृष्ण चैतन्य सज्यात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे ननर्तय जेनासि जगन्नाथं च चित्रम् जेनासि जगतां चित्रम् जगन्नाथोऽपि विस्मितः सेजियात् कृष्ण चैतन्या सज्यात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे ननर्तय जेनासि जगतं चित्रम् जगन्नाथो अपि विस्मितः सज्यात कृष्ण चैतन्य श्रीरथाग्रे ननर्तय जेनासि जगतं चित्रम् जगन्नाथो अपि विस्मिता। माताजी सा ही वे जियात में लिव लॉन्ग, जरा समय तक जिए। कृष्ण चैतन्य लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रथ अग्रे इन द फ्रंट ऑफ द कार, रथ के सामने ननरता डांस्ड नाचे। या हु जो जेना बाय हुम जिनके द्वारा, आशिता देयर वाज वहां पर उपस्थित था, जगतम ऑफ द होल यूनिवर्स पूरे संसार के, चित्रम वंडर चित्र, जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ, अपि आल्सो भी विस्मितः वाज अस्टोनिस्ट विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे। प्रसाद आज फास्टिंग नहीं है, कम से कम एक तो बोल रहा है। ट्रांसलेशन, मे द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण चैतन्य हु डांस इन फ्रंट ऑफ द कार्ट ऑफ जगन्नाथ बी ऑल ग्लोरिफाइड बाय सीइंग हिज डांस। Not only was the whole universe held in wonder, but Lord Jagannath himself became very much astonished. Om Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshur Jinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Guru. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे राम हरे राम। तो ये रथ यात्रा का समय है, रथ यात्रा फीवर है। तो हम लोगों को रथ यात्रा फीवर में आ जाना चाहिए, और रथ यात्रा का फीवर तब होता है जब जगन्नाथ के प्रति प्रेम हो, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास था। रथ यात्रा में दो चीज बड़ा प्रधान है, जिसका वर्णन इस श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी किए हैं। वह है नाचना और गाना, और सब सेकेंडरी है। जो भक्त लोग रथ यात्रा के फीवर में रहते हैं, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के फीवर में, वो नाचते हैं और गाते हैं, और जिनकी रथ यात्रा फीवर खत्म हो जाती है, वो रथ के सामने पैदल चल करके दोस्ती मनाते हैं, प्रजल पकड़ते हैं, कोई शॉपिंग करने जाता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है इत्यादि। करते हैं ना, सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, ऐसे अलग नहीं है। लेकिन हम लोगों को रहना चाहिए रथ यात्रा के फीवर में, यानी नाचना और गाना, तीसरा कोई काम नहीं, कुल दो ही काम, नाचना और गाना। और यह नाचना गाना कोई सामान्य नहीं है, ये भगवान का नाम है, गोलोकेरा प्रेमधान हरि नाम संकीर्तन। इस बॉम्बे बाजार का बिकाऊ वस्तु नहीं है, एक गोलोक वृंदावन का यह नाम है जो प्रेम प्रदान करता है। और इसी प्रेम को नाम के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हुए थे। अनर्पित चिराम चरित करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम सन्नत ज्वलम साम सभक्ति श्रिय। इस उज्ज्वल उन्नत उज्ज्वल रस को, कृष्ण प्रेम को देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे और वे दिए इस नृत्य और गीत के द्वारा। तो यहां पर कहा गया है स जिया कृष्ण चैतन्य। जो व्यक्ति नाचता है और गाता है उसके जीवन की अवधि बढ़ जाती है, आशीर्वाद के रूप में यहां पर ये दिया गया है। जियात ज्यादा दिन हो, जिए या ग्लोरीफाइड हो, जियात के दोनों अर्थ हैं, एक ज्यादा दिन जिए और दूसरा मरने के बाद भी उसका गुणगान लोग करें। कहते हैं ना कृति जस्य सजीवती, जो कुछ संसार में करता है तो जीता रहता है। महात्मा गांधी चले गए, उनका नाम आज भी है, है? प्रभुपाद जी तो नहीं गए हैं, हैं प्रभुपाद जी हैं, लेकिन संसार में भी कोई व्यक्ति न रहता हो तो भी वो जीवित रहता है अपने नाम के द्वारा। तो जियात दोनों के लिए है, लॉन्ग लाइफ नाचने और गाने से मिलेगा, क्यों नहीं, नाचेंगे और गाएंगे तो शरीर का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, मन का भी एक्सरसाइज हो जाएगा, दोनों स्वस्थ रहेंगे, शरीर और मन दोनों। तो रथ यात्रा में भक्तों को दिल खोलकर कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खूब नाचना और गाना चाहिए। स जियात कृष्ण चैतन्य सी श्री रथाग्रे ननर्तय न नर्तय, केवल नाचे ही नहीं, वे विशेष रूप से नाच रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य का वर्णन किया गया है कि कई एक टुकड़ी में वहां पर कीर्तन हो रहा था, आगे अध्याय बड़ा है पढ़ेंगे। प्रत्येक टोली में चार करताल पर एक मृदंग, चार करताल और एक मृदंग था, और कितने भक्त लोग थे उसकी भी संख्या बताई गई है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जय श्री श्री गौरताय राधाराष्ट्र बिहार इस तरह चमान की जाए, भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी झुंड में नाचते थे, सब भक्त लोग देख रहे थे कि महाप्रभु नाच रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनके नाच कैसा था, और उद्दान नृत्य कर रहे थे, इसलिए यहां पर ननर्त कहा गया है, नाचते हैं नहीं थे, विशेष लगाया गया है, विशेष रूप से नाचते थे। और जिनको देख करके जितने लोग वहां पर थे, जगत एनासिज जगतम चित्रम, जगन्नाथ रथ यात्रा में हजारों लोग आते हैं, अब देखिए राघव दास जी अपना ब्रेकफास्ट कर करके आ गए। राघव तुम इतना लेट क्यों आते हो, ये पूना का स्केड्यूल फॉलो करता है, ब्रेकफास्ट कर करके तब आता है, पूना मंदिर में ब्रेकफास्ट करते हैं बाद में क्लास में आते हैं, 8:30 ना, तो भी 8:30 आया, एग्जैक्टली 8:30 आया। मैं कहता हूं ब्रेकफास्ट होता नींद आएगी, कहां क्लास कहां सुनोगे। एनीवे, तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में लाखों करोड़ों लोग आते हैं, देश विदेश से भी आते हैं अपना कैमरा लेकर के सब लोग फोटो लेने के लिए। उतना ही नहीं, देवता लोग भी आते हैं जगन्नाथ जी का अगवानी करने के लिए, नाचने के गाने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये नृत्य गृत था, इसको सब लोग देख रहे थे, बड़े विस्मित थे। आज भी भगवान श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान चैतन्य महाप्रभु का वही नृत्य गृत इस्कान के माध्यम से सबको आज भी प्राप्त है, बजाय कि इस्कान के भक्त लोग नाचे और गाए। ठीक वही है, नाम वही है, महाप्रभु यही नाम गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और नाच रहे थे। जो महाप्रभु किए वो आज हम भी करेंगे। अंतर इतना ही है कि महाप्रभु जगन्नाथ से अभिन्न है, हैं? अभी वासुदेव घोष का वो भजन हम लोग गाए, ला भाई कहां ओ महात्मा, तू कथा सुनो तो क्या पड़ता है, कथा मैं कह रहा हूं तू कर रहा है, ला इधर तू सुनो। कहां गया वो, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, वो अंतिम श्लोक कौन है, नहीं जय जय कृष्ण, हाँ जय गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ है, अंतर नहीं है। वैसे ही भगवान के नाम में भी अंतर नहीं, अभिन्नात्मा नाम नामिनः, तो सब कुछ वही प्राप्त है। ये तकलीफ है तो हम लोगों को टेस्ट नहीं है, दुख की बात है कि टेस्ट नहीं है। वही शक्ति है, नाम नाम नकार बहुदान ये सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणी नकाल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापी दुर्दैवम इदृशम निजान नानुराग, अनुराग नहीं है, टेस्ट नहीं है। और जिस भक्त को टेस्ट रहेगा वो जरूर नाचेगा गाएगा। मुझे याद है, हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखे होंगे, एक भक्त है वृंदावन में, वो हमेशा नाचता रहता है और गाता रहता है, कभी कभी आता है, आई फॉरगॉट हिज नेम, क्या नाम, जो भी नाम है, कोर्ट यार्ड में नाचेगा, बेचारा नाचता है, घूमते रहेगा, नाचे रहेगा गाएगा है? तो भक्ता होता है, तो ये हैबिट अच्छा है। कोई कुछ भी कहे, कोई कहने से भाव नहीं, ऐसे नाचता रहता है, लेकिन आदत उसका लग गया है। किसी का आदत लगा हुआ है नाचने और गाने का, और नाचने गाने का आदत लग जाए हम में वो बल्कि अच्छा है, बजाय कि प्रजल्प करने का। प्रजल्प करने का भी आदत लगता है और नाचने और गाने का भी, तो हम लोगों को नाचने और गाने का आदत लगाना चाहिए। यहां पर वर्णन किया गया है, जेना असिज जगतम चित्रम, इसको देख करके जो लोग आए थे सबको आश्चर्य हो रहा था। आज भी हरे कृष्ण डिवोटी जब गाते हैं और नाचते हैं तो बहुत लोग देखने आते हैं, हम लोग हरिनाम करते हैं रोड पर, लोग खड़ा हो जाते हैं देखने के लिए, नाच गान सबको अच्छा लगता है, और सबों को अच्छा लगता है और विचित्र लगता है, अरे भाई हरे कृष्ण वाले गाते हैं, और अभी थोड़ा झूमना शुरू करते हैं, नाचना शुरू करते हैं। ये है प्रचार। और इससे भी बढ़कर के जगन्नाथो अपि विस्मितः, भगवान जगन्नाथ स्वयं विस्मित होते हैं देख करके कि हमारा हरिदास कैसे नाच रहा है, हैं? हरिदास नाचोगे ना, नहीं नाचेगा? भगवान जगन्नाथ भी विस्मित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के नाच को देख करके। तो प्रभुज कल का दिन है नाचने और क्या गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। ब्रजहरी प्रभु और मंदिर मैनेजमेंट महीनों से मीटिंग कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब का लक्ष्य एक ही है, नाचना और गाना। मैनेजमेंट काम खत्म हो गया, अब भक्तों का काम शुरू हो गया। मैनेजमेंट काम था व्यवस्था कर देना, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, वहां रथे नहीं है, रथ कहां चला गया भाई, तो कल रथ यात्रा वहां पर है, तो मैनेजमेंट है रथ वहां पहुंचा देना। रथ का आपने देखा पेंटिंग वेंटिंग हुआ, श्रृंगार होगा, फ्लावर डेकोरेशन होगा, वो सब काम हो गया। अब भक्तों का काम आ गया है, और भक्तों का काम है नाचना और गाना। जिस नृत्य और गीत से यहां पर कृष्णदास कविराज करते हैं, जगन्नाथोपि विस्मितः, भगवान जगन्नाथ भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हरे कृष्ण वाले कैसे नाचते हैं और गाते हैं, भगवान जगन्नाथ को भी अच्छा लगता है। तो प्लीज विल स्टार्ट नाउ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बृंद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रत्येक चैप्टर के बिगिनिंग में भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य का जय घोष दिए हैं, और सबके अंत में वे सब चीज का क्रेडिट षट गोस्वामियों को दिए हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरतामृत कहे कृष्णदास। ये है पद्धति, ये है परंपरा। कोई भी काम करना है तो अपने सुपीरियर का आशीर्वाद ले, कोई भी हो, चाहे डिवोटी हो, चाहे कर्मी हो, कोई भी हो, अपने सुपीरियर का आशीर्वाद ले। और जब सुपीरियर का आशीर्वाद लेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें सफलता की प्राप्ति होगी, नो डाउट, कीप इन माइंड। वैष्णवों की कृपा रहेगी, गुरुवर की कृपा रहेगी, तो कोई भी काम करो, क्योंकि वैष्णवों के कृपा से कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है। डेली हम गाते हैं जैसे आप प्रसादाद भगवत प्रसाद, डेली हम गाते हैं। तो वैष्णवों की कृपा से, गुरु की कृपा से कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है, और जिस पर कृष्ण का कृपा होता है वो आंख बंद करके चलेगा तो भी ठोकर नहीं लगेगा, और जिस पर कृष्ण का कृपा नहीं है, वैष्णव का कृपा नहीं है, वो डबल चश्मा पहने तो भी ठोकर लग जाएगा। तो जरूरी है कि वैष्णव कृपा प्राप्त करें, गुरु कृपा प्राप्त करें, माता पिता कृपा प्राप्त करें, बड़ों का कृपा प्राप्त करें। और जब सफलता मिल जाती है तो क्रेडिट भी हमें नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट किसको लेना चाहिए, उन वैष्णवों का जिनके कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, गुरु को क्रेडिट देनी चाहिए। यही है सफलता का कुंजी, की टू सक्सेस, गेट द ब्लेसिंग ऑफ द डिवोटीज एंड गिव द क्रेडिट। तो बिगिनिंग में चैतन्य चरितामृत के प्रत्येक पन्नों के बिगिनिंग में, अध्याय के बिगिनिंग में कृष्णदास कविराज यही कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। और अंत में श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कितनी सुंदर परंपरा है, इस परंपरा को हमको निभाना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए अपने फोर फ्रंट पर, तब सफलता प्राप्त होगी। हमें किसी काम की सफलता के लिए कितने लोगों का ब्लड और स्वेट लगा हुआ है। हम लोगों को आज गलियों में जाए लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, वो हरे कृष्ण लोग हमको देख करके बोलते हैं, ये हमारा क्रेडिट नहीं है, पूरा गुरुवर्ग का, आचार्यों का, परंपरा का कृपा है, प्रभुपाद जी का कृपा है, मंदिर के भक्तों का कृपा है, इस कपड़ा का कृपा है, ये सेव्ड हेड का कृपा है, ये तिलक का कृपा है, कंडी का कृपा है, लोग हरे कृष्ण बोलते हैं ना, इसीलिए सभी लोगों कल सेव्ड हेड हो जाना चाहिए। किसी को बाल है अभी थोड़ा थोड़ा, सब चकाचक कर लेना है बाल, मैं भी करा लूंगा, सब लोग बाल कटा लेना, एकदम सेव्ड हेड। आजकल लोग कुछ भक्त लोग भूलते जा रहे हैं वैष्णव ड्रेस को, आजकल जीबीसी डिस्कशन में ही चल रहा है वैष्णव ड्रेस धोती कुर्ता सेव ढेर। प्रभुपाद जी ने दिया है, ये अलंकार है वैष्णवों का, जिसको देख करके लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। तो हम लोगों को कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से सीखना चाहिए। जय जय श्रोता गण सुन करिए कमान, रथ यात्रा नृत्य प्रभुर परम मोहन। भगवान चैतन्य महाप्रभु का नृत्य गृत परम मोहन, मन को मोहित करने वाला है, जो कि रथ यात्रा के समय भगवान चैतन्य महाप्रभु जब नाचे थे और गाए थे। इस पास टाइम के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं श्रोताओं से। जय श्रोता गण सुन, पहले ही जय कह रहे हैं, ग्लोरीफाइड कर रहे हैं। करिए कमान, एकांतिक भाव से भगवान चैतन्य महाप्रभु जो रथ यात्रा में नृत्य किए थे उस कथा को आप लोग सुने। अब कथा प्रारंभ होती है श्लोक प्यार चार से। आरदिन महाप्रभु हैया, आरदिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रि उठे गण संगे कैल प्रात स्थान। प्रत्येक दिन का यह दिनचर्या था महाप्रभु का, कोई ऐसा नया बात नहीं था। हम लोग भी सुबह उठते हैं तो स्नान इत्यादि करते हैं। एक स्पेशल दिन था, रथ यात्रा का दिन था। भगवान चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह उठ करके और समस्त वैष्णवों के साथ में स्नान इत्यादि कर करके तैयार हो गए, अटेंटिव। रथ यात्रा है ना, अब तो सब तैयार हो जाना चाहिए बिल्कुल टाइम से। ये ना कि टेम्पल कमांडर पीछे पीछे दौड़े, प्रभु टाइम हो गया बस निकल रही है, नहीं पहले ही आ जाना चाहिए। ना कि फिर अब तुम जाओ देखो भाई कौन उधर आश्रम में रह गया है, ऐसा नहीं। पहले महाप्रभु बिल्कुल, ये है उत्साह। उत्साह महाप्रभु सीखना चाहिए, उत्साह। भक्ति में उत्साह से भक्ति बढ़ती है, उत्साह। पांडु विजय देखी बारे करिल गमन, जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंह, जगन्नाथ यात्रा कैल छाड़ी सिंहासन। तो यहां पर पांडु विजय या पहंडी विजय उड़ीसा में कहते हैं ना, है पहंडी विजय, यहां पर पांडु विजय कहा गया है। एनीवे दोनों क्या करती हैं, जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर को, श्री मंदिर को छोड़ करके और रथ पर सवार होने के लिए निकलते हैं, तो जो वो यात्रा होता है उसको पहंडु विजय यात्रा कहा जाता है। उस यात्रा का यहां पर वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। आपनी प्रताप रुद्र लैया प्रागगन, महाप्रभु गणे कराय विजय दर्शन। यहां पर इस जब जगन्नाथ मंदिर में सब लोग नहीं जा सकते हैं, केवल हिंदू है कोड अन कोड वही जा सकता है, लेकिन पहंडी विजय से सब लोग आ सकते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी को छू नहीं सकते हैं, उनके नजदीक नहीं अभी तक जा सकते हैं, रथ पर आ जाएंगे तब, लेकिन वहां तक जा सकते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र से परमिशन लेकर के अपने संगियों के साथ में वहां पर गए, यानी इसका मतलब कि उन बिल्कुल नजदीक गए थे। अद्वैत निताई आदि संग भक्त गणे सुख महाप्रभु देखे ईश्वर गमने। कौन कौन लोग थे उनके साथ में, तो यहां वर्णन किया गया अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और अन्य सब भक्त लोग थे, भगवान के आगमन का दर्शन कर करके, जगन्नाथ जी के आगमन का दर्शन कर करके भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यहां पर एक भक्तों में उत्सुकता बढ़ा रहे हैं किस ओके भगवान निकले चले, तो उनके चाल में कौन ऐसा स्पेशलिटी था जो कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को विस्मित कर रहा था है? अब उस चाल का वर्णन आगे किया जाएगा। आप लोग देखे हैं जगन्नाथ जी का है स्वरूप, पैर नहीं है, है? लेकिन यहां पर कहते हैं गमन, गमन मतलब चलना, भगवान चल करके जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप को गमन कहते हैं, एक के बाद एक दूसरा पैर रखना उसे गमन कहते हैं। चलन नहीं कहा गया है, गमन कहा गया है। रथ पर चढ़ जाएंगे चलन कहा सकते हैं, गाड़ी से चलना भी चलना होता है, लेकिन गमन का मतलब होता है वॉकिंग ऑन द फुट, पैर पर चलने की क्रिया को गमन कहते हैं। और चलना पैर पर वो भी चलना कहलाता है, घोड़े गाड़ी पर भी चलना कहलाता है, मोटर गाड़ी पर भी, वो प्लेन पर भी चलना ही कहलाता है, वो चलना कहलाता है। तो यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी शब्द चुन करके लिखते हैं, कहते हैं ईश्वर गमन, जब जगन्नाथ जी चलने लगे यानी पैर पर गमन करने लगे उसका वर्णन। अब कैसे वर्णन करते हैं, बलिष्ठ दैतागण जेनमत हाथी जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा होती, बड़े स्ट्रांग दैताज यानी भगवान जगन्नाथ को ढोने के लिए मदमत हाथी के समान ये दैत्य लोग थे जो जगन्नाथ जी को ढोते थे। प्रभुपाद जी इन दैत्यों के विषय में वर्णन किए हैं, ये वास्तव में विश्ववसु के वंशज हैं। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पूरा भार स्नान यात्रा के बाद में जगन्नाथ जी का पूरा भार ये दैत्य लोग लेते हैं, राइट। ये लोग भील जाति के हैं, आदिवासी जंगल में रहने वाले ये दैत्य हैं। लेकिन आप लोग जगन्नाथ जी का जब कथा जानते होंगे, तो जगन्नाथ जी जब नीलमाधव के रूप में थे तो उनका उपासना ये दैत्य लोग, दैत्यों के जो सरदार थे जिनका नाम था विश्ववसु, वे किया करते थे। यह प्रमाणित करता है कि भगवान के सेवा पर, भगवान के भजन पर सबका अधिकार है, कोई भजन कर सकता है, और स्पेशली जगन्नाथ जी का जो जगत के नाथ हैं, जो सबके नाथ हैं, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो चाहे कोई हो, सबके नाथ हैं, तो दैत्यों की नहीं नाथ होंगे। जब जगन्नाथ जी की स्थापना हुई तो उस समय महाराज इंद्रदुम्न, जब जगन्नाथ जी का लोग आया, लोग लकड़ी थे जगन्नाथ बनते हैं ना, दारू ब्रह्म है ना, जब लकड़ी आया तो जो राजा थे क्या नाम था, महाराज इंद्रदुम्न के जो सेनापति थे वो राजा बन गए थे, तो पंडित जी हैं खाने वाले हैं, उतर ढोएंगे गलमाधव, गलमाधव तो इंद्रदुम्न के सेनापति थे ना, अरे दूसरे जन्म में जब राजा बन गए हैं, वीर पहले वीरभद्र नाम था, अच्छा ओ गलमाधव, ओके वेरी गुड, बहुत दिन पहले पढ़ा था भूल गया। एनीवे तो महाराज इंद्रदुम्न बड़े रेस्टलेस थे कि जगन्नाथ जी का जल्दी मन भगवान का दर्शन करना चाहते थे। वो जब आया तो महाराज गलमाधव अपने बड़े बड़े लोगों को उठाने के लिए लगाए, उस लोक को हाथी को लगाए, लेकिन कोई टस से मस नहीं कर पाया। बाद में एक सवार आया है? और यह और कोई नहीं था, ये थे विश्वबसु। उनका नाम क्या हो गया था? नहीं, विष्णु शर्मा तो विद्यापति हो गए थे, वीरभद्र हो गया था। यानी आप लोग फिर से पढ़ लेना एक बार। एनीवे, और वो लोग आए और थोड़ा आसानी से उसको उठा लिए। तो महाराज इंद्रदुम्न समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और तब से जगन्नाथ जी को कैरी करने का जो भार है ये इन दैत्यों को दिया जाता है, इन सवारों को दिया जाता है। तो यहां पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी को वे लोग ढो करके लाते हैं। जगन्नाथ जी बड़े सजे धजे रहते हैं, कुछ लोग उनके हाथ तरफ और कुछ लोग नीचे। जगन्नाथ जैसे चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं, तो उनको ऐसे लाया जाता है और खींच करके वो लोग रस्सी से खींच करके और आगे लेकर के आते हैं। अब जगन्नाथ जी जब ऐसे उठते हैं तो उनका पैर तो नीचे से उठ गया हाफ, फिर आगे रखना है, तो जगन्नाथ जी को ठेस न पहुंचे, चोट न लगे, तो वे लोग तकिया रूई का वो तकिया रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी ऐसे चलते रहते हैं। अब इस तकिया का एक कहानी मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में एक भक्त था जिनका नाम था भक्त परमेष्टि। परमेष्टि बड़े गरीब परिवार के थे लेकिन जगन्नाथ के पक्के भक्त थे। परमेष्टि अपने जीवन यापन करने के लिए टेलरिंग का काम करते थे, सिलाई का काम, दर्जी थे। अहर्निश कृष्ण चिंतन में लगे रहते थे, कृष्ण का नाम गाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम। शुद्ध वैष्णव का पूरा गुण उनमें था, बहुत नम्र थे, दयालु थे, सर्वस्व दान करने के लिए तैयार रहते थे। वे जानते थे कि संसार क्षणभंगुर है, संसार में कोई सुख नहीं है। उन्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तक हो गई थी। देखने में बड़े कुबर थे, कुबर हंच बैक पीठ निकला हुआ कुबर थे, और देखने में कोई सुंदर नहीं थे, लेकिन सौभाग्य और दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी जिसका नाम था बिमला। वह भी पतिव्रता, सुशील और कृष्ण के अनन्य भक्त थी। परमेष्टि को 5 संतान थे, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। अपने टेलरिंग कार्य में तो पीएचडी कर लिए थे, मास्टर थे, डॉक्टर परमेष्टि पीएचडी कर लिए थे, बड़े फेमस दिल्ली के टेलर थे। तो आज से 500 साल पहले मुगलों का राज था, तो ये मुगल लोग अच्छा पहनावा पहनते हैं। आज भी कारीगरी का जो काम है, मंदिर का भी काम, अपना अब्दुल बाबा है उधर, सुनता होगा कथा, पता नहीं, ये सब एड्रेस जो बनते हैं मुगल लोग करते हैं। चाहे ये कार्बिंग जितना है, हमारा भी कानपुर का वो कार्बिंग हो रहा है, मकराना में सब मुसलमान भाई लोग करते हैं, तो लोग बड़े एक्सपर्ट हैं। लेकिन उन लोगों से भी एक्सपर्ट थे ये परमेष्टि जी, आप समझ सकते हैं भगवान की कृपा से। तो जो मुगल राजा लोग थे उनका जो पहनावा है, ड्रेस स्टिचिंग के लिए, सिलाई करने के लिए परमेष्टि के यहां आया करता था और सीते थे। एक समय दिल्ली के नवाब जो राजा था वह बहुत सुंदर, बहुत कास्टली सिल्क का कपड़ा भेजा और उस कपड़े में सोने का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था और उसमें हीरे जवाहरात बहुमूल्य मणियां थी।
और यह मुगल राजा कपड़ा भेजा परमेश्वरी को दिया और कहा इसे तुम दो तकिया बनाओ, इतना महंगा कपड़ा है, कहा दो तकिया बनाओ और जब तुम तकिया बनाओगे तो देखना कोई देखने न पावे, किसी का नजर नहीं लगना चाहिए, और बना करके तुम मुझे देना। टाइम ठीक हो गया कि इतना दिन में तुम बना दोगे। राजा ने कहा यार तुम अच्छा तकिया बनाओगे तो तुम्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। पहले भाव मोल नहीं, आजकल तो कोई काम तो पहले भाव पूछो, क्या भाई कितना लोगे तुम है? पहले भाव पूछो तब काम, बाद चीटिंग करेगा, पहले वो इतना वो खुश होकर जो भी दे दे लेना ही पड़ेगा, चाहे चार आना हो चाहे आठना चाहे चार लाख हो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये तरीका अच्छा था और इसका प्रमाण मैं देता हूं कि अपने हरे कृष्ण डिवोटी हैं और वो पंडित जी लोग स्वाहा करने वाले आते हैं, वो पंडित जी लोग स्वाहा करने वाले ठीका पर जाते हैं, कोई काम होता है कहीं पर घर में हवन करना हो तो वो उनका बंधा हुआ है कि हमको 4000 रुपया 2000 रुपया 500 रुपया 500 रुपया जो बैग घूमते रहते हैं 500 रुपया दोगे तो हम अपने क्या हवन करेंगे। और हमारा हरे कृष्ण भक्त किसी घर में जाता है नमो विष्णु पधार करके हवन स्वाहा कर देता है, उसको 5000 रुपये मिल जाता है बिना मांगे है? बाहर के लोग मंत्र तंत्र पढ़ते हैं हरे कृष्ण वाले को और हरे कृष्ण बोलकर 500 रुपये ज्यादा कमा लेते हैं। तो बिना मांगे जो मिलता है उससे दोनों साइड को संतुष्टि रहती है, देने वाले को संतुष्टि रहती है और लेने वालों को। आजकल हमारे भक्तों को संतुष्टि नहीं रहती, थोड़ा कम मिल गया तो गाली देते हैं, हमें सुना है एनवेलप थोड़ा नहीं मिला तो और गाली देते हैं। अरे बात सही है सर, पहले ऐसा बात नहीं था, संतुष्टि था। तो उसने कहा, राजा ने कहा कि तुम अच्छा तकिया बनाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो बेचारा तकिया बना रहा था, अब उस कपड़े से इतना सुगंध अच्छा आ रहा था और कपड़ा ही फर्स्ट क्लास का, तो स्वाभाविक जगन्नाथ जी का भक्त था, कृष्ण का भक्त था। तो भक्त लोग संसार का कोई अच्छा वस्तु होता है तो क्या चाहते हैं, भगवान को अर्पण करना। तो उसने सोचा कितना सुंदर यह है, इसका तकिया बना करके मैं तकिया बनाऊंगा और जगन्नाथ जी को अर्पणूंगा। सौभाग्य बस उन दिनों रथ यात्रा का समय था, तो यह आंख बंद करके ध्यान करने लगा, खूब सुंदर तकिया बनाया, तकिया बना लिया था और ध्यान में वह पहंडी विजय का समय आ गया था। तो वहां पर सब लोग आए थे दर्शन करने के लिए, तो ये भी चला गया दर्शन करने के लिए और वो देख रहा था कि जब जगन्नाथ जी ऐसे आ रहे थे तो यहां भी वर्णन किया गया है कि वो तकिया फट जाता है एक बार, स्ट्रांग पफ्ड अप कॉटन पेड्स कॉल्ड तुलीज वेयर स्प्रेड आउट फ्रॉम द थ्रोन टू द कार्ट एंड द हैवी ड्यूटी ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ वाज कैरिंग फ्रॉम वन पिलो लाइक पैड टू नेक्स्ट बाय दैताज व्हाइल द दैताज कैरी द हैवी जगन्नाथ ड्यूटी फ्रॉम वन पैड टू नेक्स्ट सम ऑफ द पैड्स ब्रोक एंड द कॉटन contains flooded in the air. When they broke, they made a heavy cracking sound. तो तकिया फट जाता, जगन्नाथ जी का भार है, पूरे संसार के मालिक हैं, तकिया फट जाता था। तो यह जो परमेश्वरी भक्त था देख रहा था कि जगन्नाथ जी आ रहे हैं तकिया पर, उसने क्या देखा है, तकिया फट गया। वो तकिया लेकर खड़ा था, जगन्नाथ जी तकिया उसके हाथ से ले लिए, जगन्नाथ जी के स्वयं लगा दिया तकिया। बाद में उसका जब ध्यान टूटा तो देखा सही में एक ही तकिया है, दो तकिया बनाया था राजा के लिए, और ध्यान कर रहा था और एक तकिया गया ध्यान में। आप समझ सकते हो कितना उसकी भक्ति थी। तब समय बीत गया जो टाइम राजा ने दिया था, तो राजा अपने आदमियों को भेजा, जाओ दर्जी को बुला कर लाओ तकिया हमारा बनाया कि नहीं। तो राजा के आदमी आए तो यह तकिया लेकर के गए। मन में तो बड़ा डर था कि मुसलमान पता नहीं क्या करेगा, दो तकिया बनाने के लिए दिया था, एक ही तकिया। लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी में इसकी श्रद्धा थी, भक्ति थी, विश्वास था। जगन्नाथ जी को अर्पण किया है तो लेकर गया, तकिया अर्पण किया, दिया तब गया। तो राजा ने कहा, अरे मैं तुमको दो तकिया बनाने के लिए बोला था, एक ही तकिया कैसे बनाया? सच सत बताओ, दूसरा तकिया कहां चला गया? कहे तुम्हें तो लोभ तो नहीं हो गया देख करके? तो धौर्य धारण कर करके कहा कि नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैंने सही में दो तकिया बनाया था। पूरा कहानी बता दिया कि एक तकिया जगन्नाथ जी लेकर चले गए। कहा तू पागल हो गया क्या, जगन्नाथ जी लेकर चले गए? झूठ बात बात बहाना बना रहा है, स्वयं बेटा चोरी कर दिया, वो तकिया जगन्नाथ जी लेकर चले गए। अरे मैंने सुना उनका हाथ पैर नहीं, कैसे आ सकते हैं? और श्री क्षेत्र कितना दूर है, ये दिल्ली कितना दूर है? झूठ बोलता है। मैं तुम्हें कहा था सत्य बात बोलना, तो झूठ बोलता है। दंड दिया कि ले जाओ इसको। तो फिर उसने प्लीड किया, सही बात बताया कि नहीं महाराज, आप विश्वास करें, भगवान जगत के नाथ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। मुकम करोति वाचालम पंगु लंगति ग्राम, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। लेकिन भगवान को जानने के लिए भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। भक्ति से अर्पण करेंगे पत्रम पुष्पम फलम तो यमेव भक्त्या प्रच्यति तदहम भक्ति पहिता स्नामी प्रत्यात्मना। भगवान कहते मैं ग्रहण करता हूं, भगवान ग्रहण भक्ति चाहिए। फिर मुगल कहता अच्छा तुम्हें बहुत भाव है, भक्ति है, देखता हूं तुम्हारा भक्ति है। जगन्नाथ लेकर गए, तुम ले लिया। अपने सेवकों को बुलाया, कहा ले जाओ इसको जेल में डाल दो, इसका हाथ पैर दोना दोनों स्क्रूट कर दो, टाइट कर दो पूरा हाथ पैर, और खाना पीना बंद कर दो, देखते हैं कैसे इसका भगवान इसका भक्ति क्या होता है। ले जाकर के जेल में डाल दिए, हाथ पैर दोनों बांध दिए, खाना पीना बंद कर दिए। और उसी तो भगवान पर पूरा विश्वास था, वह भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना किया है, एक भजन है उस प्रार्थना का, कि कैसे भगवान द्रौपदी का लाज रखे, प्रहलाद जी का रक्षा करे, वही सच्चा जगन्नाथ है, हमारा भी रक्षा करेंगे, हमारा लाज रखेंगे। इस प्रकार से खूब प्रार्थना जब भगवान से किया तो भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उसके प्रार्थना से विभोर होकर के भगवान, भगवान है पतित पावन। उस स्नान यात्रा के दिन मैं पतित पावन का कथा बताया था, जानते हो पतित पावन? जगन्नाथ जी का जो चेहरा है ना, वही केवल पतित पावन कहलाता है। तो पतित पावन स्वरूप का उसने दर्शन किया, फिर पूरे जगन्नाथ जी के स्वरूप का दर्शन किया, और भगवान तुरंत उसके हाथ पैर को खोल दिए। और उतना ही नहीं, वो पहले हंसबैक था, कुबर था, भगवान उसको उठाए, हाथ पैर बांध दिए थे, उठाए उसको, तो भगवान में शक्ति है, थोड़ा हाथ जोर से उठा दिए, वो सीधा हो गया, जैसे कृष्ण ने कुबड़ी का किया मथुरा में है, वैसे कुबर ठीक हो गया बिल्कुल। देखा फर्स्ट क्लास, हाथ पैर सब कुछ फर्स्ट क्लास। भगवान कहे कि तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे द्वारा अर्पण किया हुआ तकिया बहुत अच्छा था, और तुम्हारा प्रार्थना भी। और भगवान उसको छोड़ करके अब उधर चले गए मुस्लिम किंग के पास, और स्वप्न दिए भगवान उसको, और खूब डांटे कि तुम्हारे भक्त पर अत्याचार किया, वो इतना वो तकिया हमको देना चाहा तो मैं ले लिया, और जो जो बात वो कहा तुम्हारा भगवान तू झूठ बोलता है, भगवान सत्य किए, सत्यम विधातु निजवित्त भाषितम, अपने भक्तों टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ ए डिवोटी द लॉर्ड अपीयर्स। तो इस बात को सत्य करने के लिए भगवान आए और बतलाए कि तकिया मैंने यूज किया है, और डांटे कि तुम्हें तुमको और तुम्हारे खानदान को मैं खत्म कर डालूंगा, तू जानता नहीं मुझको है, हमारे भक्त को परेशान कर रहा है, जाओ उसको मुक्त करो। बेचारा सुबह सो जब उठा तो सोच रहा था कि ये सपना मैं क्या देखा, ये सही था कि गलत था, क्या मैं सपना देखा, क्या सपना देखा, उसी सोच विचार में पड़ा हुआ था। तो फिर उसे भय हो गया, यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे खानदान को नष्ट कर देंगे, मुझको नष्ट कर देंगे, मेरा राज नष्ट हो जाएगा। हां बल्कि भगवान ने चैलेंज किया कि चोर कहीं का, तुम्हारे भक्त को चोर कर रहा है, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे पास जो कुछ है मेरा दिया हुआ है, सब मेरा ही तो है ना, तू समझता है कि तकिया तुम्हारा है, मेरा तकिया था, मेरा भक्त मुझको, तुम्हारी गलती क्या है, क्या गलती किया उसने। तो खूब भगवान डांटे फटकारे। बाद में वो गया, जब उस कारागार में गया जहां पर परमेष्ठी भक्त थे, तो देख रहा है उनका हाथ पर बिल्कुल खुला हुआ है, कोई बंधन नहीं है। और पहले तो कुछ लोग थे उनका कोड़ी कुंवर थे, और सब बिल्कुल ठीक, नौजवान फर्स्ट क्लास हैंडसम। अब यह देख करके वह मुगल बादशाह आश्चर्यचकित रह गया और परमेश्वरी भक्त के चरणों में गिर पड़ा, सष्टांग दंडवत किया और कहा कि आज से आप हमारे गुरु रहेंगे। और अपने राज्य का सबसे सुंदर हाथी रथ मंगाया और रथ पर उनको सवार करा करके पूरे दिल्ली नगरी में परिभ्रमण किया कि हमारे गुरु जी हैं, और गुरु जी का सेवा किया। तो ये था परमेश्वरी भक्त का कथा, दर्जी का वो तकिए वाला। चूंकि राधिका कन्हाई प्रभु कहे थे कि ब्रजेश प्रभु ने कहा है कि कुछ जगन्नाथ जी कथा हो, तो एक तो कथा ये है, आगे भी पढ़ सकते हैं, आगे और है, मैं श्लोक संख्या 12 तक लिया, लेकिन आगे वाले कोई कर सकते हैं। दूसरा कथा है एक दूसरे भक्त का जिनका नाम था रघु, भक्त रघु। क्लास शुरू हुआ 8:30, क्योंकि राघव दास आए 8:30। तो भक्त रघु का भगवान से कोई किसी प्रकार से संबंध स्थापित कर सकता है, भगवान से 5 प्रकार का संबंध होता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो भक्त रघु जो थे उनका जो भगवान से संबंध था वह साख्य भाव का था। वे जगन्नाथ जी एक दिन दर्शन करने गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, तो क्या देख रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता। वो जगन्नाथ जी नहीं देखे, वो राम लक्ष्मण सीता को देखे। उनका नाम भी था भक्त रघु, रघु भक्त। भगवान के साथ में उनकी साख्य की सखा का संबंध था। भगवान के लिए विभिन्न प्रकार से वे सेवा करते थे। एक दिन एक बड़ा सुंदर वे जगन्नाथ जी के माला बनाए, लेकिन वो माला को बनाना के उसमें गुथे, धागा में नहीं गुथ करके बनाना के बर्क में गुथे, तो और लेकर आए पंडा लोगों को दिए कि आप लोग अर्पण करो, लेकिन चूंकि बनाना के उस बार्क में गुथा हुआ था इसलिए वो अर्पण नहीं करना चाहते थे, तो उस माला को साइड रखती है और दे दिए कि नहीं ये अशुद्ध माला है, इसको तुम ले जाओ, इसको माला को हम नहीं पहना सकते जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी का स्नान तैयारी कराए, श्रृंगार किए, जब फूल माला अर्पण करने लगे तो एक भी माला जगन्नाथ जी के शरीर पर नहीं टिक रहा था, सब गिर जाता था, वो माला भी फूल भी जो भी चढ़ाए सुबह से शाम हो गया, नहीं श्रृंगार कर पाए। बड़े परेशान हुए, यह सूचना राजा को गई। बाद में जब रात्रि विश्राम किए कि भगवान, वो सोचे थे क्या हम लोगों से गलती हो गई है, हम लोगों ने कौन सा गलती कर दिया है कि जगन्नाथ जी हम लोगों का ऑफरिंग ए माला नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो हेड प्रीस्ट और राजा सब लोग बड़े व्यग्र थे। तो रात को सोए जगन्नाथ जी से क्षमा याचना करते हुए कि प्रभु कुछ गलती हो तो बताना हमको, हम कल से फिर सिख सेवा करेंगे। तो रात को स्वप्न हुआ हेड प्रीस्ट को, और भगवान जगन्नाथ को डांट रहे थे, बदमाश कहीं का, वो हमारा भगत रघु कितना अच्छा माला बना कर लाया था, तू उसके माला को तुत्कार दिया, नहीं स्वीकार किया, नहीं लाया, मुझे वही माला पहनना है। तब सुबह उठते उठते सब पंडित लोग भागे रघु भक्त के घर पर और जाकर के वो माला लेकर के आए, और फिर वो माला जगन्नाथ जी को पहनाया गया। जगन्नाथ जी बड़े खुश हुए। रघु भक्त के साथ में कई एक लीलाएं जगन्नाथ जी किए। एक कथा कहूंगा कटहल चोरी का,
आप लोग सुने भी होंगे। जगन्नाथ जी एक दिन आए, कहे रघु रघु। कहा है प्रभु, क्या बात है? कहा चलो आज हम लोग कटहल चोरी करने चलते हैं, कटहल चोरी करेंगे। कटहल जानते आप लोग ना, जैक फ्रूट, फणस, हाँ जो जो भाषा में जैक फ्रूट अंग्रेजी है वो अनुवाद कर लो, हिंदी में अनुवाद कर लो, कटहल हो गया, उड़िया में फणस हो गया, बंगाली में क्या होगा? तो जो जो भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, क्या बात है, वहां वर्डे नहीं है। अपने पास कटहल, फणस, कितना वर्ड है, है? अपने पास आप, तुम, तू, और अंग्रेजी में यू, वैसे ही जैक फ्रूट। तो प्रभु ने कहा कि प्रभु ये आप ऐसा गंदा काम क्यों कराना चाहते हो, चोरी करने की बात कर रहे हो? अरे आप तो धर्म का सिद्धांत बताने आए हो। जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो रघु, ये सिद्धांत हमको मत बताओ, तू नहीं जानता है कि चोरी के माल खाने में मजा आता है, मुफ्त का काम मुफ्त का माल खाने में मजा नहीं आता है। अरे कुछ काम कर खाओ ना, तुम्हें मजा आता है। चोरी भी एक काम है, चोरी करो तो कुछ काम करो तो खाओ। तो कहा देखो ब्रज में यशोदा मैया मक्खन खूब खिला देती थी, लेकिन मन नहीं करता खाने का, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैं चोरी कर खड़ा था ना तो उसमें मजा आता था। चल 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 चोरी करने चलते हैं आज। और बहुत इंसिस्ट किए जगन्नाथ। तो रघु ने कहा ठीक है। अब शाम हो गया, रात को उठे और ये लोग आ गए कटहल के बगान में चोरी करने के लिए। तो भगवान ने कहा तू चढ़ ऊपर, और कटहल ऊपर से पका हुआ देख करके, अच्छा वाला कटहल पका हुआ, तू मुझको देना फेंकना और मैं उसे पकड़ूंगा। तो ये बात हुआ था। सब जो चौकीदार लोग थे वो उस समय सो गए, जगन्नाथ जी सुला दिए सब लोगों को, सब सो गए थे। तो रघु भगत ऊपर चढ़े कटहल तोड़ने, देखे पूरा रात का समय था, देखे अच्छा है कटहल, थोड़ा सूंघे तो पका हुआ था, बिल्कुल रेडी था कटहल। तो उसको रघु भगत छोड़े, कहे जगन्नाथ तैयार हो ना, अंधेरा रात था। जगन्नाथ जी कहते हाँ हाँ तैयार हूं, और ऐसे भी ये काले जगन्नाथ जी और रात भी काली, कि तुम तैयार हो ना, देखो अच्छा कटहल तोड़ा हूं, है संभालना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, गिरा दो, है मैं पकड़ लूंगा। और जब कटहल तोड़ करके गिराया तो बूम, नीचे कटहल गिरा और फट गया चारों तरफ, वहां जगन्नाथ नहीं, कोई नहीं। और रघु बहुत बड़ा सकपक हो गया कि ये क्या किया जगन्नाथ, हमको तो गड़बड़ कर दिया। अब बेचारा रघु भगत का इतना नाम था पूरे पुरी में, सब लोग रघु भगत का गुणगान करते थे, पूजा करते थे रघु भगत का, सब जानते थे पुरी में कि रघु भगत का जगन्नाथ जी से दोस्ती है, साख्य भाव है, दोस्ती है। तो इस प्रकार से अब जब कटहल गिरा, ढा आवाज आया, सब जो पहरेदार थे सब जग गए, तुरंत भागते भागते आए, कहां से आवाज आया, तो देखिए वो कटहल गिरा हुआ है, चारों तरफ फैल गया है, ये कटहल रात को ऐसे गिर गया, यहां तो कोई नहीं है, वो आवाज करे कोई नहीं था। फिर ऊपर देखे तो कोई बैठा हुआ, कहा कौन है? तो कहा कि रघु। कर रघु? अब सब बेचारे सकपक हो गए कि रघु भगत रात को कटहल चोरी करने आए। भागते भागते गए महाराज प्रताप रुद्र के पास, राजा के पास गए और राजा से कहे कि महाराज जो राज बगान है उसके कटहल के बगान में ये रघु भगत आज कटहल चोरी करने आ गए थे। तो राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु भगत चोरी करने, साधु से चोरी की भिक्षा नहीं की जाती है, साधु चोर नहीं हो सकता है, भगवान चोर हो सकते हैं, भगत नहीं चोर करना कभी, भगवान चोरी करें कोई बात नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं हो रहा था, परिदार का चलिए महाराज देख लीजिए। तो लाया गया, राजा आए, सही में कटहल गिरा पड़ा हुआ था, ऊपर रघु भगत थे। राजा ने कहा कि महाराज प्रभु जी रघु जी आप नीचे उतर जाइए, आप नीचे आइए। राजा के अन्य विनय करने पर वो नीचे आ गए। राजा ने कहा कि भक्त रघु, अरे आपको कटहल की इच्छा थी खाने की, ये बड़ा बात क्या था, आप केवल खबर हमारे पास भेजवा दिए होते, आपको बहुत ज्यादा कटहल भेजवा दिया होता, ये चोरी करने की जरूरत क्या थी कटहल का,
आपका लोग इतना सम्मान करते हैं, आपको इतना लोग मान देते हैं, पूरे श्री क्षेत्र में आपका इतना बड़ा नाम है, और आपने कटहल चोरी किया। अब रघु भगत बेचारे बोलना शुरू किए, अब सोचे कि मैं क्या बोलूं, अब क्या मैं बोलूं, भगवान का नाम बदनाम हो जाएगा ये तो एक तरह से कलंक लग गया था ना रघु भगत पर। तो राजा जब रात को सोए तो उन्हें भगवान जगन्नाथ आकर के स्वप्न दिए कि रघु भगत अपने से नहीं गया था, मैं जबरदस्ती उसको लेकर गया था। भगवान अपने भक्तों का नाम बढ़ाना चाहते हैं, तो नाम बढ़ाने के लिए लीला भगवान किए और एक कटहल का चोरी कराए। वैसे ही एक कथा है गीत गोविंद का, तो मैं हरिदास प्रभु को जबरदस्ती बैठाया कथा में, प्राय कथा में नहीं रहते हैं, चले जाते हैं उधर गुनगुनाने के लिए, तो मैं बैठाया कि आज बैठो तो गीत गोविंद गाएंगे, मैं तो उसी से बैठा। तो एक जगन्नाथपुरी के नीलाचल के इर्द गिर्द के गांव की एक लड़की थी जिसका नाम था पद्मा, और वे वहीं पर किसी का खेत बटैया पर लेकर के, बटैया जानते हो आप लोग उड़ीसा में क्या कहते हैं, बटैया खेत, मतलब 50% आप लेना 50% मैं ले लूंगा, खेत का आधा जो फसल होगा आप ले लेना आधा हम लूंगा। तो पिता बेचारा गरीब था, वो बटैया पर खेत ले लिया था और वहां पर सब्जी का खेती किया था। तो वो जो सब्जी का खेती था वह था बैगन का सब्जी लगाया था, और शाम के समय उस किसान की बेटी पद्मा बैगन तोड़ने के लिए गई थी और वहां पर वो गीत गोविंद गा रही थी। देखिए जयदेव कवि बहुत महान वैष्णव भक्त हुए हैं, जैसे वे महान कवि थे वैसे ही उनकी पत्नी पद्मावती महान कवि थी, दोनों कृष्ण के महान भक्त थे। लक्ष्मण सेन के राज दरबार में कवि थे जयदेव जी। जयदेव जी कथा बहुत ही हृदय विदारक कथा है। जब वे बंगाल से उड़ीसा जा रहे थे तो रास्ता में ही वे गीत गोविंद लिख दिए थे। एक बार गीत गोविंद लिख करके जब वे जगन्नाथ जी को अर्पण करने के लिए लेकर जा रहे थे तो कुछ चोरों ने देखा। पहले तो बैलगाड़ी पर समा जाता था ना, तो इतना किताब था बैलगाड़ी पर, तो चोरों ने समझा कि बहुत खजाना है, तो लूटने के लिए जयदेव का हाथ पैर काट कर करके और एक कुएं में डाल दिए थे, और जयदेव वहीं पर गीत गोविंद का गान कर रहे थे। जगन्नाथ जी आए और जयदेव का उद्धार किए, उनका हाथ पैर फिर ठीक हो गया। वैसे ही उनकी पत्नी पद्मावती इतनी सती थी कि एक समय रानियों के बीच में ये बात हो रहा था कि सती स्त्री किसे कहते हैं, तो सब रानियां अपना अपना सती स्त्री का परिभाषा दे रही थी। पद्मावती से पूछा गया आप नहीं बोल रही हैं, सती स्त्री किसे कहते हैं, पद्मावती ने कहा कि जब पत्नी यह सुने कि उसके पति का देहांत हो गया और सुनते ही वह चल बसे वह सती कहलाती है। तो और जितनी पत्नियां थी राजा की सब उन लोगों को बड़ा तौहीनी हुआ, हार हो गया, तो उनको बड़ा चिढ़ हो गया पद्मावती से। तो एक समय उन्होंने प्लॉटिंग किया, जैसे चित्रकेतु के पुत्र को मारने के लिए सब रानियां प्लॉट किया था, इन्होंने प्लॉट किया, और एक भागते भागते दासी आई और उसने कहा कि महारानी बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ, तो कहा कि हमने सुना चतुर्भुज जी आपके बगल में कुर्सी टूट जाएगा, कुर्सी पर ऐसे करोगे तो कुर्सी गिर जाएगा नीचे ना, ठीक से बैठो। तो वो कही कि बड़ा अनर्थ हो गया, जयदेव कवि का देहांत हो गया। जब ही पद्मावती सुनी बम चल बसी, अब कोलाहल मच गया, ये लोग तो मजाक कर रहे थे सब रानियां, कोलाहल मच गया। अब यह खबर राज दरबार में गया, जयदेव जी आए, बोले कैसे सब हो गया, तो रानियों ने बताया कि हम लोग मजाक किए, हम लोग से गलती हो गया, और हम थोड़े जानते थे कि इन्होंने सती का जो परिभाषा बताया सही में सती का यही परिभाषा है, हम इसको जांच करने के लिए किए थे। तो जयदेव केवल पद्मावती को पुकारे, पद्मावती जयदेव का आवाज सुनते ही वो जी गई। तो ऐसे थे जयदेव और पद्मावती। तो जयदेव कवि के द्वारा लिखा हुआ एक गीत गोविंद है और गोविंद लीलामृत, जिसको भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़ा पसंद करते थे। तो वह गा रही थी पद्मा, गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया, वो श्री मंदिर से निकल गए और चले गए पद्मा के पास, जहां पर वो बैगन तोड़ रही थी। लेकिन आगे न जाकर के पीछे थे। इतने भाव विभोर भगवान हो गए कि पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। उनका दुपट्टा गिर गया, उनका जो वस्त्र था वो बैगन में काटा होता है, वो कांटे में फंस करके इतर बितर हो गया। बाद में बैगन तोड़ी वो चली गई और जगन्नाथ जी भी अपने श्री मंदिर आ गए। सुबह सुबह सब ब्राह्मण लोग उठे, पंडित लोग उठे, तो देखे तो भगवान का जो ड्रेस है विचिप्त है, फटा पूरा हो गया है, भगवान का दुपट्टा नहीं है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, भागते भागते राजा के पास गए। राजा को बुलाया गया, राजा देखे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन जब रात को सोए तो राजा को स्वप्न हुआ और राजा को भगवान जगन्नाथ ने पूरा बात बताया कि कैसे ये हुआ। और उन्होंने कहा कि देखो तुम जाओ, वो मेरी भक्त है, उसको लेकर के आओ। राजा स्वयं गए पद्मावती के पास। पहले तो भेजे आदमियों को जा पता लगाओ कौन थी लड़की जो गा रही थी। पता चल गया तो राजा स्वयं गए और प्रार्थना की पद्मावती से कि आप सपरिवार आप जगन्नाथपुरी आओ, आपके लिए सब व्यवस्था की जाएगी और आपका काम रहेगा जगन्नाथ जी के लिए प्रत्येक संध्या आप गीत गोविंद का गान करना। तो कुछ समय के बाद पद्मावती को लेकर के राजा आए, उसके परिवार को सब कुछ का व्यवस्था किए और प्रत्येक शाम को जगन्नाथ जी जब सोने जाते हैं उनसे पहले पद्मावती गीत गोविंद गाया करती थी। आज भी गीत गोविंद का गान होता है, राइट? वो परंपरा आज भी है ना, सुने आप लोग कोई? तो ये संक्षिप्त में जगन्नाथ जी का दो तीन कथा मैं आप लोगों से कहा। अब कथा समापन यहीं पर करेंगे, लेकिन हरिदास प्रभु एक गीत गोविंद गाएंगे, आप लोग सब लोग ध्यान से सुनो। अर्थ समझो या मत समझो सेकेंडरी है, वो जो शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा हुआ है आप केवल सुनोगे कान में ना, आंख बंद कर करके सोना मत, आंख बंद कर करके सुनो, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है? और हरिदास प्रभु अच्छा गाता है।
शीत कमला कुछ मंडल जयदेव फास्ट लग है ना, लाइट रहे
श्रीत कमलाकुच मंडल धृतकुंडल कलितल लितव नमल जय जय देव हरे 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 जय जय देव श्रीत कमल कुच मंडल हरि श्रीत क कमला कुचमंडल धृतकुंडल धृतकुंडल कलित ललित नवमाल जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे दीनमणि मंडल मंडन हरि दीनमणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन हरि कालिया विषधर गंजन जनर जन जनर जन जदुकुल नलिन दिनेश हरि जदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे मधुमूर नर कविनाशन गरुडासन गरुडासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरि हरे जय जय देव हरे जनक सुत कृतभूषण जनक सुत कृतभूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दशकंठ जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे हरे जय जय देव अभिनव जड़धर सुंदर हरि अभिनव जड़धर सुंदर हरि अभिनव जड़धर सुंदर ध्रुतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर हरि श्रीमुख चंद्र चकोर हरि श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि हरे जय जय देव हरि तब चरणी प्रणताय हरितव चरणी प्रणताय इति भावय इति भावय कुरु कुशलम् प्रणतेषु जय जय देव हरि 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 जय जय देव हरि श्री जय देव कावेरीदम हरि श्री जय देव कावेरीदम हरि श्री जय देव कावेरीदम हरि श्री जय देव कवेरीदम कुरुते मुदम कुरुते मुदम मंगल मजल गीतम हरि कुरुते मंगल मजलम गीतम जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय Jaya Jaya Deva.